الحمد لله وكفى وسلام على الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. اس والی کلاس میں ہم اخلاق و عادات نبویہ یعنی شمائل پڑھتے ہیں، تسہیل بہشتی زیور میں سے، اور آخری کلاس میں ہم تھے پیج نمبر 123 کے اوپر، پوائنٹ نمبر 11، 11 نمبر نقطہ ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ابن السنی یا ابن السنی اور ابو نعیم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں شہد کا شربت بہت زیادہ محبوب تھا. ٹھیک ہے، تو پچھلے پوائنٹ کے اندر پینے کی چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی زیادہ محبوب تھا لکھا ہوا تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ شہد کا شربت بہت زیادہ محبوب تھا لکھا ہوا تھا. تو اس طرح سے جب کوئی بظاہر مختلف باتیں نظر آئیں حدیث مبارکہ کے اندر، تو اس کو اس بات پہ محمول کیا جاتا ہے کہ یہ مختلف یعنی احوال کے اوپر مبنی ہے یا مختلف ادوار کے اوپر مبنی ہے، یعنی وہ کسی اور وقت کی بات ہو رہی ہے، یا کسی اور وقت کی بات ہو رہی ہے، یا کسی اور سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے کہ جب کسی شربت نما چیز کو پینے کی باری آتی تھی تو شہد ملا ہوا شربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، لیکن جب پانی پیا کرتے تھے تو پانی جو ہے وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی، ٹھیک ہے، یعنی کھارا پانی نہیں، کیونکہ کچھ کنویں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کھارا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک تو ظاہر ہے سمندر کا کھارا پانی تو انسان پی ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس میں تو اتنا زیادہ سالٹ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے بعد زندہ رہنے میں اس کا مشکل ہے. لیکن یہاں پہ کنویں کے کھارے پانی کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ کنویں کا کھارا پانی پی لیتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ میٹھے کنویں کا پانی ہی پسند تھا اور ٹھنڈا وہ بھی. ٹھیک ہے، اور جب مشروب کی جو نوع میں سے جب کوئی چیز کی بات کی جائے تو اس میں سے شہد کا شربت، یعنی میٹھا، لیکن میٹھا بھی کیسا، شہد کا میٹھا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے وائٹ شوگر تو ہوتی نہیں تھی، یہ تو انڈسٹریل ریولیوشن کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس زمانے میں بھی جو ہے وہ دوسرا قسم کا، جیسے گڑ، اور یعنی گڑ جو کہ یعنی مختلف سبزیوں سے بنتا ہے، چقندر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، گنے سے بنتا ہے، گنے سے گڑ بن سکتا ہے، تو اس سے بھی مٹھاس کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے پھلوں کی مٹھاس کا بھی شربت جو ہے وہ بن سکتا ہے، لیکن ان میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہد کا شربت محبوب تھا. ٹھیک ہے، شہد ایک بالکل ہی الگ چیز ہے جو کہ شہد کی مکھی ہی بنا سکتی ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا اس کو. تو یہ تو ایک پوائنٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ 12 کہ ابو نعیم رحمہم اللہ تعالی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کے سالن میں سرکہ زیادہ محبوب تھا. سرکہ، وینیگر. ٹھیک ہے، تو وینیگر، سرکہ کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ جس گھر کے اندر سرکہ ہونا تو وہاں پہ فاقہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ سرکہ جو ہے وہ بہترین سالن ہے، اور آپ جو ہے وہ روٹی کو اس میں ڈبو کر کے کھا سکتے ہیں. تو خبز، روٹی، یہ تو پرانی چیز ہے، یہ تو عرب کے اندر عام استعمال کی جاتی تھی. چاول جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عرب میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں چاول جو ہے نا وہ ڈسکور ہوا تھا ایک طریقے سے، یعنی صحابہ کرام نے کا پہلا جو ٹاکرہ پڑا تھا چاول سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کا ہی زمانہ سمجھ میں آتا ہے حدیث سے. تو خیر، جو ہند وغیرہ کا علاقہ ہے، बरे सगीर का और बांग्लादेश का, तो वहां पर तो अल्लाह ताला ने हमेशा से चावल रखा है, लेकिन लगता ऐसा है कि वो चावल जो है ना वो दूसरी चीजों के साथ अरब में पहुंचा नहीं था उस वक्त तक, ठीक है। तो गंदम मौजूद था और जौ मौजूद था और बाकी इस तरह की चीजें जिनसे कि रोटी बनाई जा सकती है, तो वो चीजें मौजूद थी। तो रोटी को जो है वो आप सिरके के साथ मिला करके खा लें, सिरका का जो टेस्ट होता है खट्टा मीठा, तो इस किस्म का यानी जैसे जिस तरह से कि हमारे वो होते हैं ना गरम मसाले होते हैं, तो इंडिया के जो गरम मसाले होते हैं भारत महाभारत, तो भारत जो है वो अरबी जुबान के अंदर गरम मसाले को ही कहा जाता है, तो जहां से गरम मसाले आते थे उस जगह का नाम जो है वो भारत, ठीक है। लेकिन हर जगह जो है वो सिर्फ मिर्ची वाला मसाला नहीं खाया जाता, बल्कि कुछ मसाले जो होते हैं वो खट्टे मीठे भी होते हैं, जैसे गुजरातियों का सालन जो होता है ना, अभी चंद दिन पहले ही कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे तो वहां पे गुजरातियों के सालन का जिक्र निकल आया, तो याजिस भी यही कह रहा था और वो भी यही कह रहे थे कि गुजरातियों के सालन के अंदर ना थोड़ा सा मिठास होती है, ठीक है, मीठा सा सालन होता है उनका, मसाला मीठा होता है, तो खट्टा मीठा ये सब जो है वो मिल मिला करके एक सालन बन जाता है इससे। तो आप सरसम को सिरके का सालन जो है वो ज्यादा महबूब था क्योंकि उसके अंदर भी इस तरह की एक टेस्ट होता है। 13वां पॉइंट कि मुस्लिम रहमहुल्लाह ने हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसीना ज्यादा आता था, और अजीजी में है कि हजरत उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना को इकट्ठा कर लेती थी और दूसरी खुशबू में मिला लेती थी क्योंकि वो खुशबूदार होता था, ठीक है। तो यही वाला वो पॉइंट था कि जिस जो के सीरत क्लास के अंदर भी सारे उसको याद आ गया था, तो जिन्होंने सीरत क्लास सुनी थी तो उनको याद होगा कि बच्चों के सामने जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के पसीने का जिक्र निकल आया था, तो आप ससलम को बहुत ज्यादा पसीना आता था, और इसके तहत फिर हमने वहां पर भी ये बात करी थी, और जाहिर है आपने हर कोई तो ही मौजूद होगा उस क्लास में, तो आप भी सुन लीजिए कि अल्लाह ताला ने जो हमारा ये एक सिस्टम बनाया है ना पूरा का पूरा, ये ड्रेनेज सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं जो जमा हो जाते हैं तो फिर वो बिलाखिर वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, तो उन फ्लूइड्स को जो है उन यानी रतूबतों को बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक सिस्टम, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि पानी वगैरह को जो है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है, लेकिन एक ये भी सिस्टम है जो कि पसीने के जरिए से इन लिक्विड्स को जो है वो बाहर निकालता है। तो पसीना जो है वो तो आपके यानी पोर्स होते हैं बॉडी के अंदर ना, स्किन के ऊपर पोर्स होते हैं यानी सुराख बहुत ही बारीक, तो उनके जरिए से पसीना बाहर निकलता है, पसीने के अंदर बदबू होती नहीं है, ये आज के जो साइंटिस्ट है ना रिसर्चर्स ये बताते हैं कि पसीने में इटसेल्फ बदबू नहीं होती, बल्कि बदबू जो है वो उन बैक्टीरिया की वजह से होती है जो कि पसीने के अंदर आके लग जाते हैं, ठीक है, जिनके लिए पसीना जो है ना वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, ब्रीडिंग का यानी उनको वो पसीने के ऊपर पलते हैं, तो उन बैक्टीरिया की वजह से बदबू होती है, जैसे कि आपके दांत के अंदर मुंह के अंदर जो स्मेल हो जाती है ना, रात को खाना खाते हैं और सुबह को जो है वो मुंह में स्मेल हुई भी होती है, तो वो स्मेल किस वजह से होती है, क्योंकि जो खाने के जर्रात बहुत ही बारीक जर्रात दांतों के अंदर लगे रह जाते हैं या फंसे रह जाते हैं, तो उनको जो है ना रात ही में बैक्टीरिया आकर के खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया जो है ना वो खा खा करके बल्कि थोड़े मोटे भी हो जाते हैं फिर, और खाने को जो है ना वो खा खा के पतला कर देते हैं, इस वजह से अगर आपके दांतों के दरमियान कोई जर्रा फंस जाए ना और रात को आप उसको ना निकालें तो सुबह को वो खुद ही निकल जाता है, क्यों, इसलिए कि बैक्टीरिया ने उसको खा करके छोटा कर दिया होता है, तो ये बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर जिनकी वजह से बदबू होती है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया ही जो है ना ये हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत ज्यादा फाल यानी रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो ये बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर भी होते हैं और ये पसीने के ऊपर पलते हैं, तो इनकी वजह से जो है वो बदबू होती है। इन बैक्टीरिया को मार देना कोई डिओडोरेंट इस्तेमाल करके या कोई और इस किस्म की केमिकल इस्तेमाल करके, ये साइंसदान आज के कहते हैं, कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये डिओडोरेंट्स के जरिए से इनको मार देना जो है ना ये कोई अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, क्योंकि आप जो है ना वो जो आपके लिए मुफीद बैक्टीरिया हैं उनको अगर आपने मार दिया इन डिओडोरेंट्स के जरिए से, को इस्तेमाल करके जिनके अंदर एसिडिटी होती है, एसिडिटी की वजह से ये मर जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके हेल्पफुल बैक्टीरिया मर गए ना, तो फिर उससे क्या होगा कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो फिर पनपना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हेल्पफुल बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया को कंज्यूम भी करते रहते हैं, खाते भी रहते हैं। तो अगर वो मर गए तो फिर हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए जो है वो मैदान साफ हो जाता है और वो फिर आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि यानी इन्होंने रिसर्चेस तो बड़ी करी हैं, लेकिन जो डिओडोरेंट इंडस्ट्री होती है तो आखिर उसने भी तो कुछ क्या कहते हैं कच्ची गोली नहीं खेली होती है ना। तो ये जो आपकी यानी क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं क्या क्या कहते हैं भैया आप तो, ये जो इस किस्म की चीजें होती हैं यानी बॉडी को जो है वो अच्छा करने वाली, और शैम्पू और कंडीशनर्स और इसी तरह से ये सब सिंगार वगैरह की चीजें जो होती हैं, तो ये भी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर। और ये जो है ना, ये लोग जो है वो रिसर्चर्स को, साइंसदानों की रिसर्चर्स को जो है ना ये कंट्रोल भी करते हैं, हर चीज जो है वो बाहर नहीं आने देते। अगर किसी चीज के जरिए से इनकी इंडस्ट्री जो है वो खराब होती हो, इनकी बिक्री खराब होती हो ना, तो वो रिसर्चेस जो हैं वो रुक जाती हैं या वो अनकंक्लूसिव हो जाती हैं। क्या मतलब कि इन्होंने ड्योडोरेंट्स के ऊपर रिसर्च करी कि भाई क्या ड्योडोरेंट्स का जो है वो कैंसर के साथ कोई ताल्लुक है कि नहीं है। ठीक है, तो इन रिसर्च करके इनको क्या पता चला हमें बताते नहीं है। और ये आप जो है ना इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि जिस रिसर्च का बिल आखिर नतीजा ये निकले कि हमें कोई बजाहिर कोई ताल्लुक नजर नहीं आया कैंसर में और यूज ऑफ ड्योडोरेंट्स में, हमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आया, बस वही समझ लें कि इनको नजर आ गया है। अब बता देने से जो है ना वो मसला पड़ जाना था, इस वजह से उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट दे करके उस रिसर्च को बंद कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने बड़ी रिसर्चेस करी हैं, कभी 2002 में रिसर्च करी, फिर 2006 में रिसर्च करी, लेकिन वे यही कह के बंद कर दिया कि नहीं जी हमें कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। ठीक है, कैंसर में और यूज ऑफ ड्योडोरेंट्स में। 2017 में कोई रिसर्च की गई थी, 2016 में, जिसके बिलाखिर आखिर में इन्होंने ये कहा है कि ताल्लुक तो कोई अभी भी नजर नहीं आया, लेकिन इसको जो है ना वो मजीद रिसर्च करने की जरूरत है। ठीक है, तो बहरहाल इस किस्म के ये खेल तमाशे जो है वो इंसानियत के साथ करते रहते हैं। तो कम से कम हमने जब से ये रिसर्च पढ़ी है ना, तो उसके बाद से हमने तो ड्योडोरेंट्स को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। अब जो है वो सफाई सुथराई, नहाना धोना, ठीक है, पानी का इस्तेमाल, इसके जरिए से जो है वो अपने आप को साफ रखने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। खाम खा का रिस्क लेने की क्या जरूरत है इन केमिकल्स के जरिए से। अच्छा, तो आगे चलें कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत की है कि मेवा जात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज़ा खजूरें और खरबूजा ज्यादा पसंद था। ठीक है, ताज़ा खजूरों का मतलब क्या होता है कि जो कि दरख्त से उतरी हुई होती हैं और जो जो, जो तर होती हैं, तरो ताज़ा। ठीक है, फिर वो खजूरें जो है वो थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो है वो सूख सूख जाती हैं और उनके अंदर जो जूस वगैरह है वो निस्बतन कम हो जाता है। ठीक है, और बिलाखिर ये सूखते सूखते जो है ना वो छुआरे की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। तो बिल्कुल शुरू में जो खजूर होती है वो यानी ताज़ा और बहुत ही यानी रतूबत से भरपूर खजूर होती है, तो आप सबको को वैसी खजूर ज्यादा पसंद थी। मदीना मुनव्वरा में आज भी जो है वो ऐसी खजूरें अलग से मिलती हैं, लोगों के बागात में से भी उतरती हैं, जब वो स्पेशली पिछले क्या कहते हैं जून के महीने में जो खजूरों के पकने का वक्त होता है ना, तो उस वक्त ये बहुत ज्यादा बल्कि नजर भी आती हैं। सड़क पे आप जा रहे हैं और बराबर में कोई खजूरों का बाग है, तो वहां पे आपको इस तरह की पीली, जिनको हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में भी शायद खज्जियां कहते हैं, खज्जी। ठीक है, बहरहाल तो आप सजम को ताजा खजूर है और खरबूजा ज्यादा ज्यादा महबूब था। तो खरबूजा उस जमाने के फलों में से है और इसके अंदर रस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, मीठा होता है वगैरह। अबू नुऐम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त दूसरे हिस्सों के गोश्त से ज्यादा पसंद था। ठीक है, इसके बारे में पिछली क्लास के अंदर भी बात हो चुकी थी, ये पॉइंट गुजरा था दस्ती के गोश्त वाला ना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खाने पीने के अंदर पसंद नापसंद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, लेकिन पसंद वाली चीज का आपसे असलम जो है वो तारीफ किया करते थे, जिससे लोगों को पता चल जाता था कि हाँ भाई आपसे असलम कोई बात पसंद है। और जो नापसंद जो चीज थी ना, तो उसकी बुराई नहीं किया करते थे लेकिन तारीफ भी नहीं किया करते थे। ठीक है, तो तारीफ का ना होना इससे पता चल गया कि भाई ये पसंदीदा चीज नहीं है, लेकिन बुराई भी नहीं करी क्योंकि ये एक बद अखलाकी वाली बात है। किसी खाने की चीज जो अल्लाह की नेमत है उसकी बुराई कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बद अखलाकी है। और सलम तो आला खुलुक अजीम के ऊपर नाफिस फाइज थे। अच्छा, तो इसी तरह से ना, मतलब आज के दौर में भी जो जो नेक लोग होते हैं, तो उनकी अगर खाने पीने के अंदर पसंद नापसंद है, तो उसके ऊपर बहुत यानी नाक बहू नहीं चढ़ाना चाहिए कि भाई क्यों, ये तो नेक आदमी हैं और ये जो जाहिद हैं दुनिया को तर्क किए हुए हैं, तो इनकी तो खाने पीने में कोई पसंद ही नहीं होनी चाहिए, है ना। ये तो ऐसे होने चाहिए कि बस जो मिल गया वो खा लिया, और बस इनको तो बस अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए और तस्बीह फेरते रहना चाहिए और मसल्ले के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, खाने पीने से इनका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात याद रखनी चाहिए कि नहीं, ये तभी चीज है, और ये नेक लोगों के अंदर, जाहिद लोगों के अंदर भी ये चीज होती है। नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा बढ़ करके जाहिद और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, बस बुराई करना और किसी की जिंदगी अजीरन कर देना नापसंदीदा खाने की वजह से, ये जाहिर है ना नबी अलैहिस्सलाम करते थे और ना जो है वो आज के दौर के नेक लोग ये काम किया करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 16, इमाम अहमद और नसई रहमहुल्लाह ताला ने बसनद सही हजरत अबू वाकिद रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होते थे तो नमाज बहुत मुख्तसर पढ़ते थे, और जब तनहा नमाज पढ़ते तो बहुत तवील पढ़ते थे। ठीक है, इमाम होने का मतलब ये नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम कभी इमाम होते थे कभी मुक्तदी होते थे, ठीक है ना, कोई और इमाम बना होता नहीं। नबी अलैहिस्सलाम जब मौजूद है तो आप सल्लम के अलावा और कोई इमामत कर ही नहीं सकता, सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को, जब इंतहाई यानी अलालत का जमाना था उस वक्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमामत करवाई गई थी, वरना नहीं। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब जमात में नमाज पढ़ रहे होते थे और जाहिर आप सल्लम में इमामत कर रहे होते थे, तो उस वक्त जो है वो मुख्तसर नमाज पढ़ते थे। तो इसके अंदर भी थोड़ी सी तफसील है कि फजर की नमाज में जो है ना वो जरा लंबी तिलावत किया करते थे नबी अलैहि सलाम, क्योंकि वो वक्त ऐसा था कि जिसके अंदर जो है वो वक्त के अंदर भी थोड़ा सा यानी बेसिकली लोगों का कामकाज नहीं होता था उस टाइम पर। ठीक है कि भाई काम मुतासर हो रहा है, अगर लंबी नमाज पढ़ ली तो मुश्किल हो जाएगी, या सफर पे लोग निकले हैं, वो सफर तो उस वक्त लोग किया ही नहीं करते थे। सफर तो जो है वो चाश के वक्त में शुरू किया करते थे सफर। ठीक है, तो फजर का वक्त जो है ना इस तरीके से इत्मीनान वाला वक्त होता था, तो सबसे सबसे लंबी नमाज जो है वो फजर के वक्त में पढ़ते थे। 1 मिनट, और उसके बाद जो है वो दूसरी उससे कम लंबी नमाज जो है वो इशा के वक्त में पढ़ते थे, क्योंकि इशा के वक्त भी जो है वो कारोबारी जिंदगी खत्म हो जाता था। ठीक है, उस जमाने में ये एडिसन साहब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे बल्ब बनाने के लिए। ठीक है, तो जब बल्ब बन गया तो फिर दिन और रात के दरमियान फर्क ही खत्म हो गया, अब दिन में भी काम रात में भी काम। ठीक है, और फिर जो है माशाल्लाह लोगों की जो है वो डायबिटीज भी शूट होती है, क्योंकि नींद ही नहीं हो रही होती, जाग रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, और उल्टी सीधी जो है वो गप्पे लड़ा रहे होते हैं या उल्टा सीधा, तो इस वजह से जो है ना माशाल्लाह रोशनियों का शहर, लेकिन अंदर जो है ना वो सारी रोशनियां जो है वो बुझ गई, बाहर की रोशनियां जल उठी अंदर की बुझ गई। पहले जो है वो बाहर की जो है बुझी होती थी अंदर की जली हुई होती थी। ठीक है ना, तो इज अ कॉम्प्रोमाइज इन एवरीथिंग। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जब अच्छा इशा की नमाज जो है वो दूसरे नंबर की तवील नमाज होती थी, यानी कम तवील फजर के मुकाबले में, और मगरिब की नमाज जो है वो उससे भी कम होती थी, जहरी नमाज होती थी लेकिन छोटी सूरतें पढ़ते थे, और असर और जहर की नमाज जो है ना ये तो वैसे भी सिर्री नमाजें हैं और इनके अंदर जो है वो कोई लंबी लंबी सूरतें नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी बस जहर की फर्ज पढ़ी और असर की फर्ज पढ़ी। ठीक है, तो फरमाते हैं कि जब तन्हा नमाज पढ़ते थे ना तो बहुत तवील पढ़ते थे। तन्हा नमाज का मतलब क्या कि एक तो जमात की नमाज नहीं, इमामत नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात यह कि कोई 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 इंतजार करने वाला नहीं है कि भाई इनकी नमाज खत्म होगी तो मैं इनसे बात करूंगा, इनकी नमाज खत्म होगी तो फिर जो है वो मेरी मदद करेंगे, ठीक है ना। तन्हाई का मतलब ये नहीं है कि बस जमात नहीं है तो इसका मतलब है तन्हाई। तन्हाई का मतलब ये होता है कि जब कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो, कोई आपका इंतजार ना कर रहा हो, ठीक है, किसी का काम जो है वो आपकी वजह से अटका हुआ ना हो, ठीक है ना, वो होती है तन्हा नमाज। तो उस नमाज में नबी अलैहिस्सलाम तवील पढ़ते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदियों के साथ इसलिए मुख्तसर नमाज पढ़ते थे कि उनको तकलीफ ना हो, और तन्हा इसलिए लंबी नमाज पढ़ते कि नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन और सुकून हासिल होता था, और इससे बढ़कर क्या चैन होगा कि महबूब हकीकी के सामने आजजाना खड़ा होकर उससे इल्तिजा करे। मुख्तसर और लंबी पढ़ने की मकदार दूसरी अहादीस में तफसील के साथ वारिद हुई है, ठीक है, वही जो कि अभी आपके सामने जिक्र हुई कि ईशा फजर और मगरिब की नमाजें जो है उनमें क्या तनासुब होता था। बाकी कुछ मजीद तफसील भी है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी, जैसे सूरह काफ, ठीक है, काफ और कुरआन अल मजीद, ये जो सूरत है ये फजर की नमाज में जो है वो तकरीबन यानी बाकायदगी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ठीक है। तो सूरह काफ जो है वो अच्छी खासी ढाई ढाई सफ़े की तो है, नॉर्मल कुरान के साइज में, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि इमाम अहमद और अबू दाऊद रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के दरवाजे पर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे के सामने खड़े ना होते बल्कि दाएं या बाएं तरफ खड़े होते और फरमाते अस्सलामु अलैकुम। तो सामने खड़े होने का क्या वजह क्या है कि सामने क्यों नहीं खड़े होते? फरमाते हैं कि यह तरीका सुन्नत है कि कहीं जाए तो दरवाजे के सामने खड़ा ना हो, दाएं या बाएं जानब खड़ा हो, इसलिए कि इस तरह खड़े होने में किसी की बेपर्दगी का अंदेशा नहीं, ठीक है। यानी एक तो दरवाजा जो होता था उस जमाने में वो हमारी तरह के जो है ना वो सॉलिड मेटल के दरवाजे या सॉलिड लकड़ी के दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि यानी खजूर के छाल के बने हुए दरवाजे, खजूर के पत्तों के बने दरवाजे, बाद में जो है ना वो दरवाजे पक्के होने शुरू हुए, जैसे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, ठीक है। तो वैसे भी अगर सामने खड़ा होगा तो जो है वो अंदर नजर आने का एहतमाल है, कुछ छोटा मोटा जो है वो सुराख हो गया वगैरह, तो दाएं या बाएं खड़े होते थे। अच्छा, जब खुलेगा दरवाजा तो फिर उस जमाने में और भी जो है वो घर बहुत ही यानी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होते, तो बस सीधा स्ट्रेट सेहन के अंदर दरवाजा खुल गया, ठीक है, सेहन होता था और दरवाजा होता था, तो अंदर जो है वो घर की औरतें हैं या कोई और ऐसी चीज है तो उससे बेपर्दगी का अंदेशा होता था, तो लेफ्ट या राइट खड़े होते थे। अलबत्ता अगर दरवाजा बंद हो तो दरवाजे के सामने खड़े होने में भी मुजायका नहीं है, यानी दरवाजा खुला हुआ है तो फिर तो सामने खड़े होकर के अंदर झांकना ये तो बहुत ही बदतहजीबी है, ठीक है, लेकिन दरवाजे के अंदर कुछ सुराख वगैरह का भी एहतमाल हो तो भी सामने खड़े होना बेपर्दगी की वजह से मना, ठीक है, लेकिन दरवाजा बंद है तो सामने खड़े होने में मुजायका नहीं है। अच्छा, आजकल जो है वो इसके अंदर एक और भी चीज शामिल हो गई है कि लोग जो है दरवाजे के अंदर जो है वो या तो कोई होल वगैरह होता है कि जिससे देख करके फिर खोलते हैं, ठीक है, या अब तो लोगों ने कैमरा भी लगाने शुरू कर दिए हैं अपने दरवाजे के सामने कि कौन खड़ा हुआ है। तो अब अगर आप जो है ना वो बिल्कुल ही राइट पे खड़े हुए होंगे या लेफ्ट पे खड़े हुए होंगे तो बंदा जो है अंदर से होल से देखना चाह रहा है कि भाई कौन आया हुआ है, आवाज अगर पहचानी नहीं जा रही, ठीक है, या आपकी आवाज पे वो ट्रस्ट नहीं कर रहे कि पता नहीं आवाज किसी और की बना करके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो अब जो है ना वो आप इतना दूर खड़े हुए हैं कि वो आपको देख ही नहीं सक रहे हैं होल के जरिए से, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो यानी देख लेना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे होल वगैरह या कैमरे वगैरह की सिलसिला है तो मैं सामने ऐसे खड़े हूँ कि घर के अंदर जो फर्द है ना वो मुझे देख सके, ठीक है। तो ये मौके महल के मुनासबत से जो है ना वो अपने अमल को मॉडिफाई भी करना होता है, सिर्फ ये नहीं कि किताब के अंदर हदीस पढ़ ली तो उसका मतलब है कि बस मैंने उसके ऊपर नॉन वैसी अमल करना है, ठीक है। तो अच्छा, घर वाले को अपने आने की इत्तला इस तरह करे कि अस्सलाम वालेकुम कहे, अगर वो पहली बार ना सुने तो दोबारा यही अल्फाज कहे, ठीक है। तो डोर बेल्स तो जमाने में नहीं होती थी, तो अस्सलाम वालेकुम के जरिए से, ठीक है, अपना अपना ऐलान कर दे, और फिर उसके बाद जब अंदर वाला सवाल नाम पूछे तो नाम बताए, ठीक है, जिस नाम से मारूफ है, लोग पहचानते हैं जिस नाम से, यानी बड़ी मारूफ हदीस है, क्या नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर कोई आया तो आपसे ने पूछा भी कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया अना, मैं हूं मैं हूं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो जवाब में क्या अना अना, यानी बस इतना ही कहा लेकिन नागवारी के अंदाज में कहा कि ये क्या मतलब अना अना, नाम बताओ भाई, ठीक है, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना, तारुफ करवाना जो है ना, ये यानी ये सुन्नत से भी साबित है और ये अच्छे अखलाक हैं, ठीक है। अब जो है वो हम माशाल्लाह कुछ लोगों के मैसेजेस आते हैं नए नंबर से, और वो ऐसे शुरू हो जाते हैं कि जैसे कि हम उनको यानी उनके नंबर को जानते हैं, उनका नंबर भी हमें याद है कि भाई क्या, यानी भाई अपने आप को इंट्रोड्यूस तो कराएं, आप हैं कौन, ठीक है ना, आपका हुदूद अरबा क्या है, आपका क्या है, आगे पीछे कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने आपको हमारा नंबर दिया है, किसने कहा आपको, तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, ठीक है। इसके बाद फिर आप बात करें ना तो बंदे को बात भी समझ में आएगी, आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर भी अप्लाई होती है, जिस तरह से के दरवाजे के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। उसी तरह फोन जब किसी को कर रहे हैं तो पहले बताएं कि जी मैं फलाना शख्स बोल रहा हूँ या फलानी बोल रही हूँ, फिर तो उसके बाद बात शुरू करें। अच्छा, पॉइंट नंबर 18, 18 के इब्न साद रहमहुल्लाह ताला ने तबकात में, यानी तबकात इब्न साद जो मशहूर किताब है सहाबा कराम के बारे में, तो तबकात में हजरत अकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके चेहरे पर खुशी के आसार देखते तो उसका हाथ अपने हाथ में ले लेते, इससे गर्ज ये होती कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मानूस हो जाए, ठीक है। तो कोई बहुत ही अच्छे मूड में आया हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहा है, तो यानी मानूसियत को बढ़ाने का ये एक तरीका तरीका है, ठीक है, या कम से कम उस कल्चर में तो था। आज जो है वो ये मानूसियत को बढ़ाने का तरीका शायद ना हो, तो यानी जहां पे नहीं है तो वहां पर जो है ना इसकी कोशिश ना करें, ठीक है। लेकिन जहां पर है कि भाई लोग इससे जो है ना वो गुड फील करते हैं, या आपके ऐसे रिश्तेदार हैं, आपका आपके घर आने के जो है वो छोटे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, तो उनका हाथ जो है वो हाथ में ले लेने से जो है ना उनको मानूसियत फील होगी। लेकिन किसी अडल्ट को जो है वो आप किसी इस तरीके से हाथ हाथ में ले करके बैठे तो हो सकता है वो घबरा करके जो है ना वो उल्टा यानी अनकंफर्टेबल ही हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो मौके की मुनासिबत से जो है ये वाला काम करना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कि एक जमाने में जो है ना वो अच्छी होती हैं, अच्छी थी, ठीक है, लेकिन फिर जो है ना वो उस चीज को बुरे लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ठीक है, और वो इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि वो उनका जो है ना वो सिंबल बन गया, ठीक है, वो उनका जो है ना वो पहचान बन गई, बुरों की पहचान बन गई, ठीक है। तो अब जब वो चीज बुरों की पहचान बन गई ना, तो अब उससे जो है वो नेकों को इज्तनाब करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहूदी जो है वो कोई नेक लोग तो नहीं है ना, है ना, वो तो अल्लाह ताला के और नबियों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, ठीक है। तो अब रोजा रखना एक बड़ा नेकी का काम है, लेकिन जब यहूदियों ने जो है वो रोजा रखना शुरू किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके रोजे से, यानी जो 10 मुहर्रम के रोजे वाली बात है कि मूसा अलैहि सलाम को जो है वो निजात अल्लाह ताला ने दी थी फिरौन से, तो यहूदी जो है वो उसकी खुशी में जो है वो रोजा रखा करते थे। तो नबी अलैहि सलाम फरमाए कि अच्छा, जब पता चला कि अच्छा यहूदी भी रोजा रखते हैं, आप फरमाए कि मैं जो हूं ना फिर 2 रोजे मिला करके रखूंगा, 2 रोजे मिला करके। हालांकि रोजा रखना कोई बुरी चीज तो नहीं है, अगर यहूदी रखते हैं तो सो वॉट, है ना, हम तो अगर होते तो कहते सो वॉट, मैं भी रोजा रखूंगा, वो भी रोजा रखते हैं, लेकिन नहीं, उनसे अपने आप को मुख्तलिफ बना करके रखना, ठीक है ना। इसी तरीके से आज के दौर के अंदर एक इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल वो क्या है जी, वो रेनबो कलर्स, रेनबो कौसे कज़ह के जो रंग है ना, इसमें कौन सी बुराई है, ये तो एक नेचर की चीज है, ठीक ठीक है ना। लेकिन बदबख्तों ने पिछले चंद सालों में कौसे कजह के जो कलर्स हैं, रेनबो कलर्स हैं, इनको अपना झंडा बना लिया है, ठीक है ना। और इनको जो है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इनकी पहचान बन गए हम जिन्स परस्तों की, ठीक है। तो अब जो है ना, वो हमें इज्तनाब करने की जरूरत पड़ रही है। गलती से किसी से अगर, यानी किसी के जहन में नहीं आया, वो हर कोई तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम अजीम गुनाह से वाकिफ है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। तो उसने अगर रेनबो कलर की कोई चीज बना दी, किसी बच्चे ने बना दी, तो उसको कसूरवार तो नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन बड़ों को अगर पता है तो फिर वो उनसे थोड़ी सी तरह से बात कर लें कि ये अब जो है ना, ये चीज बहुत ही बुरे लोगों की पहचान बन गई है, अब जो है ना हमें इसे इज्तनाब करना पड़ जाएगा। यानी बदकिस्मती है, अब क्या करें। तो ये इस तरह की मिसालें जो है वो होती हैं। तो इसी तरह से ना, ये हाथ में हाथ लेकर के पकड़ना जो है, ये अनफॉर्चुनेटली आज के दौर के बहुत ही बुरे लोगों की जो है ना, वो इस किस्म की आदत हैं। तो इस वजह से देख लेना चाहिए कि कहाँ पर ये मुनासिब है और कहाँ पर ये मुनासिब नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 19, इब्ने मुंदा रहिमहुल्लाह ने उतबा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आता और उसका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद होता तो उस नाम को बदल देते थे। क्योंकि तो ऐसी कई मिसालें हदीस मुबारका में मिलती हैं कि कोई आया और उसका नाम जो है वो, यानी क्या कहते हैं, यानी अब्दुशम्स था, के सूरज का बंदा, ठीक है। तो नबी अलैहि सलाम ने उसका नाम बदल करके अब्दुल्ला कर दिया जैसे, ठीक। मिसाल के तौर पर मुझे एग्जैक्टली इसको याद नहीं है, एक याद आ रहा है, एक मिसाल याद आ रही है कि हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी अलैहिस्सलाम की अहलिया उम्महातुल मोमिनीन, तो उनका जो नाम था ना वो बर्रा था, बर्रा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस नाम को बदल करके जुवैरिया कर दिया, ठीक है। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ताला ने वगैरह ने रिवायत किया है, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ताला वगैरह ने रिवायत किया है कि, यानी उनके अलावा और लोगों ने भी रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अपने माल की जकात लाता था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुनासिब जगह पर खर्च कर दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ए अल्लाह फुला शख्स पर रहमत फरमा, ठीक है। तो ये जो है वो हम बल्कि एक आयत जो है वो याद नहीं है, लेकिन अभी जो क्या कहते हैं, जो बयानात चल रहे हैं जुमे के दिन वाले, तो उसके अंदर भी ये बात हो चुकी है पिछले पिछले से पिछले बयान के अंदर। तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म भी फरमाया था कि आप जो है ना उनके लिए दुआ कर दिया करें। तो आप जो है वो फिर उसके ऊपर, यानी अल्लाह की रहमत की दुआ किया करते थे जो आप के पास लेकर के आता था कुछ। हमें भी ये तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जब कोई हमारे जरिए से सदका तकसीम कराए या किसी चंदे में रकम दिलाए तो हम उसको यही दुआ दें, ठीक है। तो हदिया देने के लिए भी कोई आए ना, तो उसको भी फिर इस तरह से दुआ दे देनी चाहिए। और किसी दूसरों के लिए भी अगर कोई कोई चीज दे तो उसके लिए भी फिर इस तरह से दुआ कर देनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल के तौर पर फरमाए। बातें जो है वो जहन से भी निकल जाती हैं, लेकिन याद दहानी से जो है वो फिर से इंसान इरादा कर ले कि ऐसा मैं इंशाअल्लाह करूंगा। हाकिम रहमहुल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहा से रिवायत किया है कि जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खुशी पेश आती थी तो फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तत्तिमुस्सालिहात, यानी तमाम की तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है कि जिसकी नेमत से जो है ना वो नेमतें मुकम्मल हो जाती हैं। यानी नेमतों का ततम्मुह जो है, यानी जो पूरा मुकम्मल होना जो है ना, वो अल्लाह ताला की यानी नेमतों से है, तो हम उसकी जो है वो तारीफ करते हैं, सारी की सारी तारीफें उसी के लिए हैं। तो ये एक ऐसा जुमला है जो कि यानी वाकई हमें जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जुबान पे चढ़ जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो बहुत अल्लाह ताला की नेमतों में डूबे हुए हैं, ठीक है। घर का होना ये कितनी बड़ी नेमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम से शायद कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका घर ना हो, कोई भी जो है वो आसमान तले तो नहीं रह रहा ना, और खाने पीने का मौजूद होना, भूखे तो नहीं सो रहे होते हम में से कोई, कब आखिरी दफा भूखा सोया होगा, कि घर में कुछ खाने को ही नहीं था, ठीक है, तो बादशाहों की तरह खाते हैं, बादशाहों की तरह पीते हैं। फिर सवारी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह या तो जाती सवारी होती है, अगर नहीं भी होती तो भी कोई ना कोई सवारी जो है वो किराए के ऊपर मिल ही जाती है ना, बस बस भी जो है वो किराए पे मिल ही जाती है, वरना तो माशाल्लाह लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियां होती हैं या जो भी मोटरसाइकिल वगैरह होती है। और उसके बाद जो है वो और कितनी नेमतें, औलाद, औलाद की नेमत, ठीक है, उसको जब देखें, औलाद को देखें और दिल खुश होता है, तो ये वाली दुआ जो है ना वो जरूर से पढ़ लेनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तत्तिमुस्सालिहात, ठीक है, इसको जो है वो रूटीन के अंदर डाल लेना चाहिए अपनी, इसको लिख करके लगा लेना चाहिए, बल्कि जैसे औरतें किचन में काम करी है ना, तो फ्रिज के ऊपर कागज पे इसको लिख करके किसी मैग्नेट वगैरह के जरिए से फ्रिज पे लगा दें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही तत्तिमुस्सालिहात। फ्रिज खोलें और फ्रिज के अंदर जो है वो माशाल्लाह खाने पीने की चीजें, तो ये वाली दुआ पढ़ लें। बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को देखा, ये वाली दुआ पढ़ लें। और जब कोई नागवारी पेश आती तो फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, ठीक है, हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ। अच्छा जरा पॉज कर लीजिएगा, ये आज अभी म्यूट कर रहे हैं काम की वजह से। जी अगला पॉइंट 22, इमाम अहमद और इबन माजा रहिमहुल्लाह ताला ने हजरत इबन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में जिहाद में लौंडी और गुलाम आते, ठीक है, तो लौंडी और गुलाम आते जो है वो जिहाद से ही आते थे जाहिर है, ठीक है, सीरत क्लास में माशाल्लाह बार बार इसका तस्करा हो रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम घर वालों को बांट देते ताकि उनमें बाहम तफरीक ना हो जाए, यानी अगर किसी को मिले और किसी को ना मिले तो अंदेशा है कि इन लोगों में बाहम रंजिश पैदा हो जाए। अब लोगों को भी यही तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जब कोई चीज़ तकसीम करें तो हर मौके पर इसका ख्याल रखें कि ऐसा तरीका इख्तियार ना करें कि जिससे बाहम लोगों में रंजिश पैदा हो और कोई फसाद और खराबी पैदा हो, चाहे बरादरी में तकसीम की जाए या अहलो आयाल में या शागिर्दों व मुरीदों में, ठीक है। तो ये जो है ना नबी अलैहिस्सलाम का ये अमल था, और मकसद इसका क्या था कि किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिलेगा तो शैतान के लिए जो है ना वो रास्ता खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा कि वो कोई वसवसा डाले, कोई बुराई डाले, तकसीम करने वाले के बारे में बदगुमानी डाल सकता है, तो वो तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर तकसीम करने वाला नबी अलैहिस्सलाम जैसा कोई है, ठीक है, आपसे सलम खुद हैं, तो फिर तो उस आदमी का ईमान ही खतरे में पड़ जाएगा, या शायद ईमान खत्म ही हो जाएगा अगर बदगुमानी हो गई नबी के बारे में, तो फिर तो ईमान ही खत्म हो गया ना। लेकिन कोई नबी जैसा है, नबी का कोई वारिस है, कोई शेख है, कोई बड़ा आलिम है, तो उसके बारे में बदगुमानी होने से भी फिर जो है ना वो ईमान खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि फिर जाहिर है वो फिर उससे पूछना बंदा छोड़ देता है, जिससे बदगुमान हो जाए तो फिर उससे हिदायत लेना, उससे रहनुमाई हासिल करना फिर इंसान छोड़ देता है, ठीक है, और फिर जब हिदायत ला और रहनुमाई हासिल करना छोड़ देता है तो फिर शैतान तो रहनुमाई करने के लिए मौजूद है, फिर वो अपनी रहनुमाई करता है, ठीक है। तो ठीक है जी, इस वजह से जो है ना एहतियात करनी चाहिए जितना कर सकते हैं। अच्छा अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आप हर एक के अंदर हर चीज तो नहीं डिवाइड कर सकते ना, हर चीज डिवाइडेबल भी नहीं होती ना, ठीक है, तो ऐसी सूरत जब हो ना कि आपने किसी को ज्यादा देना है, किसी को कम देना है, या किसी को नहीं देना है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है ना वो बहुत ही खामोशी से काम करना चाहिए, बहुत ही सीक्रेसी से काम करना चाहिए कि जिसको नहीं दे रहे हैं उसको पता ही ना लगे, ठीक है, इस बात का एहतमाम बहुत ज्यादा फिर करना चाहिए, और जिसको दिया है तो उसको भी बहुत ताकीद के साथ कि भाई आपको जो दे रहे हैं ना तो आपने इसका ढंडोरा नहीं पीटना है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बहुत ज्यादा इसका एहतमाम किया करते थे, हत्ता कि आप तो यानी बाकायदा अपने जमाने के जो है ना इस चीज के अंदर अपने जमाने के सबसे नुमाया बुजुर्ग थे। तो एक वाकया तो वैसे आ रहा है जहन में, टाइम मुकम्मल हो गया है, लेकिन अगर सुना के, अगली क्लास से भी इसका बड़ा ताल्लुक है, मिसाली बीवी वाली क्लास, वैसे तो इसका ताल्लुक मिसाली मर्द से ज्यादा है, लेकिन है वही टॉपिक अज़दवाजी ताल्लुकात वाला। तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो उनकी जो है ना वो दो बीवियां, ठीक है, एक बीवी जो थी वो तो बड़ी उम्र की थी, यानी हजरत की उम्र की थी, काफी अरसा गुजरने के बाद उन्होंने जो है वो दूसरी शादी करी थी, और वो दूसरी बेगम साहिबा जो थी वो उम्र में भी कम थी, और हजार हजरत से उम्र का भी बड़ा फर्क था। ये शादी जो हजरत ने करी थी, इसकी जो वजूहात थी ना, ये बड़ी ही अजीब, यानी ये आम वजूहात नहीं थी कि औलाद नहीं थी पहली बीवी से। तो हजरत फरमाते हैं कि मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं करी है, या मैंने किसी और जो रीजन से, जिससे लोग शादी करते हैं, मैं इस वजह से शादी नहीं करी है। तो वो जो ऐसी रीजन है कि मैं बस मैं नहीं बता सकता वो रीजन, ठीक है। बहरहाल तो हजरत ने जो है वो दूसरी शादी कर ली। अब हजरत तो बहुत अच्छे यानी शोहरों में से थे, और पहली बीवी जो थी वो खुश भी बहुत थी, ठीक है। तो पहली बीवी जो थी उन्होंने हजरत से फरमाया कि आपने जो ये दूसरी शादी करी है ना, तो इससे तो आपने अपने मुरीदों के लिए दूसरी शादी का दरवाजा खोल दिया है। अब आपके मुरीद तो आपकी इत्तबा के अंदर जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़े हुए होते हैं, और बहुत कोशिश करते हैं आपकी हर मामले में इत्तबा करने की। तो वो तो फिर अब उनके लिए दरवाजा खुल गया, अब तो हर जो है मुरीद दूसरी शादी कर रहा होगा, फिर तीसरी कर रहा होगा, चौथी कर रहा होगा, है ना। तो हजरत ने जवाब दिया, अजीब जवाब दिया, बहुत ही अजीब जवाब दिया। हजरत ने जवाब दिया कि मैंने दरवाजा खोला नहीं है, मैंने तो अपने उन मुरीदों के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, दरवाजा बंद कर दिया है। किन मुरीदों के लिए? जो कि वाकई मेरी इत्तबा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे नहीं जो कि हमारी तरह के, है ना, मैंने शेख के कंधे पे रख के बंदूक चलाने वाले मुरीद नहीं। करना खुद खराबी हो, खुद कुछ बुरा काम करना हो, और शेख के किसी अमल को जो है ना वो बहाना बना करके उसके अपने लिए जस्टिफिकेशन क्रिएट करना, इसको कहते हैं किसी के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना, ठीक है ना। तो उन मुरीदों की तो बात ही कोई नहीं हो रही यहाँ पर, बात तो उनकी हो रही है कि जो कि सही मानों में शेख की से मोहब्बत करने वाले होते हैं और उनकी इत्तबा की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने उनका उनके लिए दरवाजा बंद कर दिया है, ठीक है। तो बेगम साहिबा ने पूछा, जी वो कैसे, शादी तो आपने कर ली है, अब दरवाजा बंद कैसे हो गया? तो फरमाने लगे कि जब मेरे मुरीद मुझे देखेंगे ना कि दो बीवियों के दरमियान बराबरी करना कितना मुश्किल काम है, तो वो डर के मारे जो है ना वो दूसरी बीवी करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, डर जाएंगे और वो दूसरी बीवी करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अब इसका वाकया भी मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम ने अपने मजमून में लिखा कि एक दफा हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो मजलिस में बैठे हुए थे कि एक देहाती आया और उसने दो तरबूज उठाए हुए थे हदिया लेकर के, दो तरबूजों का। तो हजरत थानवी ने उसे पूछा कि भाई ये क्या है, दो तरबूज क्यों? तो देहाती जो है वो अपने देहाती अंदाज में जवाब देने लगा कि मौलवी तुम्हारी दो बीवी है ना, इस वजह से मैं दो तरबूज लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर थानवी ने कहा कि अच्छा इन तरबूजों में का कितना वजन है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि दोनों बीवियों को एक ही वजन का तरबूज देना जरूरी है। तो उसके ऊपर देहाती कहने लगा, तू फिक्र ना कर, मैं तरबूजों का वजन करके लाया हूँ, दोनों बिल्कुल बराबर वजन के हैं, बिल्कुल बराबर बराबर वजन के हैं। तो उसके ऊपर थानिया ने फरमाया कि अच्छा वजन तो बराबर हो गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि इनमें कौन सा मीठा है कौन सा फीका है, ठीक है, तो मीठा फीका में भी तो फर्क हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो है ना वो झिल्ला गया देहाती, कहने लगा मैं इसके अंदर घुस के कोई थोड़ी देखा है मैंने कि मीठा कौन सा है और फीका कौन सा है, ठीक है। तो उसके ऊपर हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने क्या किया कि अपने खादिम से कहा कि छुरी लेकर के आओ और दोनों तरबूजों को जो है ना बिल्कुल निस्फ में काट दो, ठीक है, बिल्कुल आधा आधा दोनों तरबूजों को काट दो। तो फिर एक तरबूज का आधा और दूसरे तरबूज का आधा एक बीवी के घर भिजवा दिया, और दूसरे और पहले तरबूज का आधा और दूसरे, है ना, इसका आधा, यानी आप समझ गए होंगे कि चाहे वो मीठा था और ये फीका था, तो भाई मीठे का आधा और फीके का आधा, उसी तरह दूसरे को, दूसरी बीवी को भी मीठे का आधा और फीके का आधा, ठीक है। तो इस तरह से बराबर हो गया मामला। तो उसको देख करके जो है ना वो देहाती कहने लगा कि मौलवी तू तो बहुत ही मुश्किल में है भाई, मौलवी तू तो बहुत ही मुश्किल में है, ठीक है ना। तो उसके बाद थानवी ने उसको कहा कि हाँ यहाँ की मुश्किल जो है वो काबिले बर्दाश्त है, लेकिन वहां की मुश्किल जो है ना वो काबिले बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर बराबरी सराबरी नहीं करी ना, तो फिर वहां पर ये बीवियां जो है ना वो मेरे गले पड़ जाएंगी और मुझे अल्लाह ताला फिर माफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये होती है दूसरी शादी, सही है। अब कौन जो है वो लेक्चर आजकल के सोशल मीडिया पे लेक्चर सुन सुन करके जिन्होंने दूसरी और तीसरी करी हुई है, तो वो तो फिर ना उनको तो अलिफ बे भी नहीं पता मसावात का, और तकवा का, अल्लाह ताला के सामने हिसाब देने का, ठीक है ना। तो वो दूसरी बीवियां जो कर रहे होते हैं ना, वो बहाने बना रहे होते हैं कि बेवाओं की मदद करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बेवाओं की मदद उसमें कम हो रही होती है। जो तो पहली वाली होती है वो छोड़ के जा रही होती है ना। औलादें जो होती हैं वो यानी यतीम हो रही होती हैं, या जिंदा बाप की यतीम औलादें हो रही होती हैं, और बहुत सारे जो है वो उसकी वजह से मुआशरे के अंदर फसाद क्रिएट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि हम उस जमाने में पहुंच चुके हैं कि जिसके अंदर जो है ना वो एक तमाशा बन गया है, दीन जो है वो एक तमाशा बना दिया गया है। और हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ करके कभी यूट्यूब के ऊपर उसका तमाशा देख रहे होते हैं, कभी यूट्यूब के ऊपर फलाने का तमाशा देख रहे होते हैं और बड़े खुश हो रहे होते हैं, राइट। लेकिन हमें अंदाजा ही कोई नहीं है कि ये तमाशे जो है ना वो क्या हो रहे हैं हमारे साथ। अल्लाह ताला बात की समझ की तौफीक और इख्तियार की जिंदगी हम सबको अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क्लास